इस वक्त एक इंसान एक लाश के साथ बिल्कुल उस लाश को नग्न करके उसके ठीक बराबर में उससे चिपक कर सोया हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। सोते हुए भी वो इंसान बड़ा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि मौत का अगर दूसरा कोई नाम चेहरा होता तो सिर्फ उसका खतरनाक चेहरा होता। और अब क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और वो इंसान जिसे 4 बजे उठने की आदत थी वो तुरंत उठा। उसने एक नज़र अपने बराबर में सोई हुई लाश को देखा और उस लाश के होठों को चूमकर उसने फटाफट से उस लाश को कपड़े पहना दिए थे और कपड़े पहनाकर उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा बर्फ के सीलियों में एक बड़े से फ्रीज़र में बंद कर दिया था और कुछ केमिकल्स वगैरह लगा दिए थे ताकि लाश की स्मेल किसी को ना आए। पिछले 20 सालों से उसने लाश को इसी तरह से संजोकर रखा हुआ था। उसके बाद वो नहाया। नहाकर वो सीधा पूजा पाठ करने के लिए बैठ गया था। कितने ही घंटे तक पूजा पाठ करने के बाद वो वहां से उठा और मुस्कुराते हुए उस लाश के पास एक बार फिर गया। उसने उसे गुड मॉर्निंग विश किया, उसके माथे पर जो उसने पूजा की थी उसे कुमकुम लगाई और बोला, हैप्पी एनिवर्सरी जान, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा बोलकर उसने उस लाश के माथे को चूम लिया था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि राजवीर था। राजवीर जिंदल, वही जिसने आस्था की जिंदगी में अंधेरा भरा था। इतना ही नहीं, कुछ और भी राज था जो राजवीर से जुड़ा हुआ था। वेल, अरमान सिंघानिया तहखाने के एक कमरे में मौजूद था। वहां से अब चीख आनी बंद हो गई थी। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था मानो एक भारी तूफान के बाद की शांति, चारों तरफ शांति छा गई हो। वो चारों पांचों जो बाहर खड़े हुए थे सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अंदर का नज़ारा देखें, क्योंकि अंदर का नज़ारा देखना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। वेल, टाइगर ने एक नज़र सबकी ओर देखा और अगले ही पल दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा, एक पल को टाइगर का भी दिल सहम सा गया था, लेकिन अगले ही पल एकदम इमोशनलेस होकर अरमान के पास आ गया था। और उसके पास जाकर उसने अरमान को कंधों पर से पकड़ा और उसे सीधा फार्म हाउस के ही बने उसके कमरे में ले आया था। वहीं जैसे ही आहान ने अरमान की ओर देखा तो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी। अरमान बड़ा ही भयानक दिखाई दे रहा था, हैंडसम डैशन अरमान। हालांकि अरमान ने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उन काले कपड़ों में से भी खून इस तरह से निकल रहा था मानो कि अरमान का ही खून बह रहा हो। और जब टाइगर अरमान को लेकर वहां से चला गया, तब उसके बाद सभी ने एक नज़र कमरे की ओर देखा था जहां पर अरमान ने उन 12 लोगों की लाश को इतनी बुरी तरह से काटा था, इतनी बुरी तरह से काटा था कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किसके हाथ हैं, किसके पैर हैं, किसकी आंखें हैं या फिर किसके शरीर का कौन सा अंग है। सारे अंग अलग अलग कटे हुए पड़े हुए थे। इतना भयानक नज़ारा देखने के बाद आहान तो ऑलमोस्ट बेहोशी होने लगा था, क्योंकि उन सब में आहान एक ऐसा था जो थोड़ा सा नरम दिल का था, वरना वो सारे काफ़ी मजबूत दिल के थे। लेकिन फिलहाल ये खौफनाक मंजर देखने के बाद तो उन सब की भी हालत काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। वेल, मारिया ने एक नज़र सबकी ओर देखा और फिर वो भी अब टाइगर के पीछे पीछे चली गई थी। तब ध्रुव ने आहान को सहारा दिया था और राहत की सांस लेते हुए बोला, मुझे लगता है कि हम सबको अब मेंशन में लौट जाना चाहिए। तभी आकाश तुरंत बोला, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। आकाश की बात सुनकर सुमित, ध्रुव, आहान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तब ध्रुव कन्फ्यूजन से बोला, लेकिन आकाश भैया, क्यों, क्या हुआ, हम सब मेंशन क्यों नहीं जाएंगे? अगर अगली सुबह सब ने हमें चेक किया और हम सब मेंशन में नहीं मिले तो हम सब लोगों को क्या जवाब देंगे? तभी आकाश ने ध्रुव की ओर देखकर कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी दादाजी को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज की रात हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो इसीलिए सबके सब मेरे साथ मेरे मेंशन में रहेंगे, सो डोंट वरी। अब जैसे ही आकाश ने ये बताया, ध्रुव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और वैसे भी इस वक्त रात के यानी सुबह के ही 4 बजने वाले थे, तो उन लोगों का मेंशन जाने का कोई फायदा नहीं था। वहीं दूसरी ओर आस्था, जो कि अरमान का काफी देर से इंतजार कर रही थी, कितनी देर तक अपने लॉकेट को देखने के बाद उसे उठाकर रख दिया था, क्योंकि जब से नानी माँ ने उसे टोका था कि उसे इस तरह से ये लॉकेट नहीं पहनना चाहिए, तो इसीलिए आस्था ने अब डिसाइड कर लिया कि जब तक वो लॉकेट के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती वो इस लॉकेट को अपने गले में नहीं पहनेगी। वहीं अब आस्था को जब इंतजार करते करते 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया और अब तक अरमान नहीं आया, अब आस्था को परेशानी होने लगी थी। साथ ही साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, नींद तो उसे आ नहीं रही थी। इसीलिए आस्था अब सीधा अपने कमरे से नीचे हॉल में आ गई थी। हॉल में आकर उसने सोचा कि वो एक बार दादाजी को जगाकर पूछ ले कि अरमान जी के बारे में उन्हें कुछ पता है या नहीं पता है, लेकिन उसने सोचा कि उन्हें इस तरह से दादाजी की नींद खराब नहीं करनी चाहिए। उसे एक बार को आकाश और रश्मि का ख्याल आया था और उसे ये तो पता था कि ध्रुव और आहान यहाँ नहीं है, क्योंकि ध्रुव अपने फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था, ये बात वो जानती थी। तो इसीलिए उसने सोचा कि शायद ध्रुव आहान भी ध्रुव के साथ ही होगा। अब आस्था कितनी ही देर तक इधर उधर टहलती रही, लेकिन जब उसके दिल को चैन नहीं मिला तो उसने सोचा कि उसे एक बार नानी माँ के कमरे में जाना चाहिए, हो सकता है नानी माँ भी जाग रही हों। वेल, अब जैसे ही आस्था धीरे धीरे नानी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसे इस बात का एहसास हुआ मानो कि नानी माँ के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उनके कमरे में कोई है। यह एहसास होते ही आस्था की हैरानी बढ़ चुकी थी। उसने सोचा, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया। आस्था इसी सोच के साथ अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर नानी माँ के कमरे की तरफ जाने लगी, और जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर वो अंदर गई, उसने देखा नानी माँ तो आराम से सोई हुई थी, लेकिन आस्था को एक परछाई दिखाई दी थी। आस्था कंफ्यूज्ड हो गई थी, उसने जरूर किसी न किसी की परछाई तो देखी थी, फिर अचानक से वो परछाई कहाँ जा सकती है। आस्था को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। एक तो अरमान घर पर नहीं था, ऊपर से इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह से भला कोई सिंघानिया मेंशन के अंदर कैसे आ सकता है। कहीं ना कहीं आस्था ये सब सोच ही रही थी, और उसने देखा कि नानी माँ आराम से सोई हुई थी, तो आस्था ने नानी माँ को उठाना जरूरी नहीं समझा था। और जैसे वो वहाँ से वापस मुड़कर जाने लगी, तुरंत नानी माँ ने आस्था को आवाज दे दी, गोरी बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? तेरी तबीयत ठीक तो है ना? ऐसा बोलकर नानी माँ तुरंत ही उठकर बैठ गई थी। तभी आस्था ने अपने हाथ में लाया वो डंडा छुपा दिया, वरना नानी माँ देख लेती तो ना जाने कितने सारे सवाल करती। उसके बाद आस्था ने नानी माँ की ओर देखकर बोला, वो नानी माँ, हमें एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी और बस इसीलिए हम बस आपको देखने के लिए आ गए। तब नानी माँ मुस्कुराई, मुस्कुराकर आस्था के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ऐसी हालत में कभी कभी दिल घबरा जाता है और नींद नहीं आती, तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे पैरों की तेल से मालिश कर देती, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती। ऐसा बोलकर नानी माँ ने आस्था के गाल को प्यार से छू लिया था।
तभी आस्था ने नानी माँ के हाथ पर हाथ रखा था और हिचकिचाते हुए बोली, नानी माँ, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त आपका आराम करने का समय है, हमें आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे दिल में कुछ बात है जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको बोलें तो बोलें कैसे। तब नानी माँ ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर बिठाया और बेफिक्री से बोली, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे कभी भी कुछ भी कहने के लिए ज्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सुन रही हूँ। ऐसा बोलकर नानी माँ मुस्कराकर आस्था की ओर देखने लगी। तब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मरोड़ने लगी थी। नानी माँ समझ गई कि ज़रूर आस्था को कोई ना कोई बात परेशान कर रही है, क्योंकि जब भी आस्था अपनी उंगलियाँ मरोड़ती थी तो कुछ ना कुछ वो ऐसा कहना चाहती थी जो वो नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन फ़िलहाल अगर आस्था ने बोला है कि उसे नानी माँ से बात करनी है, तो इसीलिए नानी माँ ने आस्था को संतापना दी और गाल पर हथेली रखते हुए बोली कि वो बेझिझक होकर उससे अपने दिल की बात कह सकती है। तब आस्था को हिम्मत मिल गई थी और उसने एक पल को नानी माँ को गले से लगाया और गले से लगाए हुए इमोशनल होकर बोली, नानी माँ, हम ये जानना चाहते हैं, हम तो आपकी सगी नाती भी नहीं हैं, इतना ही नहीं, हमारी वजह से आपकी बेटी, आपके दामाद की जान चली गई, फिर भी आप हमें इतना प्यार कैसे कर सकती हैं? क्या आपके मन में कभी भी इस बात का मलाल नहीं आया कि हम वही लड़की हैं जिनकी वजह से आपकी बेटी की जान गई? क्या आपके दिल में कभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ, फिर भी आज तक आपने हमें पता नहीं लगने दिया और हमें ढेर सारा प्यार किया? हम समझ नहीं पा रहे हैं नानी माँ कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। आपने निस्वार्थ होकर हमें प्रेम किया, ये जानते हुए भी कि हमारी वजह से आपकी बेटी की जान गई। ऐसे बोलते हुए आस्था की आंखें नम हो उठी थीं, क्योंकि आस्था को इस बात का सच तो पता चल गया था कि उसके माँ बाप की जान आस्था की वजह से गई है। इतना ही नहीं, उसके अपने सगे माँ बाप की जान उसकी वजह से गई है। लेकिन उसे अभी तक पूरा सच ये नहीं पता था कि किसने क्यों उसके परिवार की जान ली है। वो तो बस डेस्परेटली उस डॉक्टर को ढूंढना चाहती थी। और कहीं ना कहीं डायरी पढ़ने के बाद उसे इस बात का भी एहसास हो रहा था कि ज़रूर वो वही डॉक्टर होगा जिसे उसने संगीता और कुणाल की जान लेते हुए देखा था। तब नानी माँ ने आस्था के सर पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा, रुंधे आवाज में बोली, मेरी बच्ची, तो उस वक्त एक मासूम 5 साल की बच्ची थी जिसकी जान के हजारों दुश्मन थे। तुम जानती हो, तुम्हारे आने के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में कितनी सारी खुशियां आ गई थीं। मेरी बेटी की जिंदगी में जब तुम नहीं थी, मेरी बेटी एक भी दिन सुकून से नहीं सो पाई थी। मेरी संगीता रातों को उठ उठकर रोया करती थी। वो है ना प्रियंका की माँ सीमा, उसे बहुत ताने मारा करती थी। इतना ही नहीं, उसे वो बांज कहकर बुलाया करती थी। मेरी संगीता ने माना बनने के कारण 2 से 3 बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन कुणाल ने उसे हर बार बचाया था। संगीता अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन जब तुम मेरी बेटी की जिंदगी में आई, मेरी बेटी खुश रहने लगी। तुम्हारे साथ जिंदगी के 5 साल
मेरी बेटी ने बहुत खुशी से गुजारे थे। और तुम जानती हो, जब उसने मुझे तुम्हारा सच अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही बताया था, क्योंकि शायद उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसीलिए पहले ही उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो एक बात बताओ तुम, मैं भला तुमसे प्यार कैसे ना करती बेटा? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो खुद हालातों की शिकार हुई थी। एक छोटी सी मासूम 5 साल की बच्ची जिसके परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये भी पक्का नहीं है कि तुम्हारे दादाजी या तुम्हारा भाई जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी और दामाद तुम्हें वहां से लेकर भाग गए थे। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ उसके बाद क्या हुआ होगा। तुम जानती हो बच्चे, उस डायरी में जो एक एक बात लिखी हुई थी, मैंने ही संगीता को लिखने को कहा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफी ना हो, तुम्हें सारा सच पता चले। लेकिन धीरे धीरे मैं तुमसे इतना ज्यादा अटैच हो गई कि मैं खुद ही डरने लगी कि कहीं सच जानने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे बोलते हुए नानी माँ की भी आंखें भर आती हैं और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया था। तब नानी माँ ने आस्था को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में सुला लिया था। नानी माँ, जो कि आस्था के काफी देर से जागी हुई थी, नानी माँ का साथ पाकर, उनके प्यार पाकर उसकी आंखें बोझिल होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया उन सब लोगों की बेरहमी से हत्या करने के बाद कितने ही घंटे तक नहाया था, क्योंकि उस वक्त वो पूरा खून में रंगा हुआ था। नहाने के बाद अरमान ने अच्छे से अपना ड्रेसअप चेंज किया, और क्योंकि अब सुबह के ऑलरेडी 5 बज चुके थे, कोई भी पूरी रात नहीं सोया था, तो इसीलिए अरमान ने बाहर निकलकर उन सब की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला कि हमें लगता है अब मेंशन चलना चाहिए, अगर कोई पूछे तो बोल देना कि हम कुछ काम से गए थे। अब जैसे ही अरमान ने ये बोला, सबने अपना सर हां में हिला दिया था। ध्रुव, आहान भी अब उनके साथ हो लिए थे, और तहखाना, जो कि थोड़ी देर पहले उसकी दीवारें हर चीज खून से सनी हुई थी, वो अब एकदम क्लीन हो चुका था और पहले जैसा खूबसूरत हो चुका था, और जल्दी ही वो सब मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। रूफ, शेयर करें दोस्तों।